الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے پیر ہلا نہیں پائے گا جب تک کہ وہ ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اس میں سے پہلا سوال یہ کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. اس حوالے سے پچھلی مجالس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ہماری زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے اور زندگی میں آنے کا مقصد اللہ نے جو قرآن میں بتایا وہ عبادت ہے. تو در حقیقت یہ سوال یوں ہے کہ زندگی میں کتنا وقت عبادت میں گزارا اور کتنا وقت غفلت میں گناہوں میں گزارا. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جس شخص کو اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے یا آخرت کے مقابلے میں کتنی تھوڑی رہنے کی جگہ ہے اور یہ کتنی چل چلاؤ کی جگہ ہے, اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ادھر تو تم مسافر ہو, اس دنیا میں تم مسافر کی طرح رہو. تو ایسے شخص کو اس دنیا کی چیزیں اور اس دنیا کی کامیابی بے فائدہ سی نظر آئے گی, اس کو بالکل رغبت بھی نہیں ہوگی, دل اس کی دنیا کی طرف جو ہے وہ مائل بھی نہیں ہوگا. اگر آخرت کی صحیح سمجھ میں آ گئی, اس دنیا کی صحیح حقیقت سمجھ میں آ گئی. کل کی مجلس میں یہ مثال بھی دی گئی کہ اگر ایک شخص ہے, اس کے دو کاروبار ہیں, ایک کاروبار سے وہ 1 لاکھ روپے ہر مہینہ کماتا ہے, مگر جو دوسرا کاروبار ہے اسے 2-3 کروڑ روپے کماتا ہے, تو اس کو پہلا کاروبار تھوڑا سا بے فائدہ ایسا ہی نظر آئے گا, اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوگی, اس پہ کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس میں بہت زیادہ اس کی کارکردگی اچھی ہے نہیں ہے, اس کے اندر ٹیم کیسے کام کر رہی ہے نہیں کر, اس کو سارا فکر ہی نہیں ہوگی, اس کو ساری فکر اس کی ادھر 2-3 کروڑ والے کاروبار پہ ہوگی. یہی حال اس شخص کا ہے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے گا, اس کو اس چیز سے یہ دنیا کی کامیابی, دنیا کا مال, دنیا کی چیزوں سے اتنی رغبت نہیں ہوگی, تو بے فائدہ ہی نظر آئے گی یہ دنیا. تو دنیا کے پیچھے بھاگنا وہ آٹومیٹکلی بند کر دے گا, عبادت کا شوق بڑھ جائے گا, وہ وقت پہ نماز پڑھے, وہ وقت پہ عبادت کرے, تہجد بھی پڑھے, وہ نوافل بھی ادا کرے, وہ ذکر اذکار بھی کرے, اسے لگے گا کہ یہ کروڑوں اور بہت سال کی جو زندگی ہے اس میں فائدہ اس چیز نے مجھے دینا ہے. جیسے کاروباری شخص بڑے کاروبار جو ہے اس کی طرف توجہ سارا رکھتا ہے کیونکہ اس کو اپنے کاروبار کی سمجھ آ گئی ہے, اسی طرح جس کو دنیا کی حقیقت کی سمجھ آ گئی اس کی توجہ بھی آخرت کی طرف ہی ہوگی. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا, الدنیا ملعون, اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے, وملعون ما فیہا, اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے, الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کی یاد. تو پہلا سوال بڑا اہم سوال, قیامت کے دن کی یہ دنیا میں تم نے کیسے وقت گزارا, सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में वक्त गुजारना कैसे है, एक आम बंदा कैसे वक्त गुजारे। उसका एक जवाब तो यह है कि जी इबादत में वक्त गुजारे। जब सारे फैसले इबादत पे होने हैं, करोड़ों अरबों साल की उम्र जो है उसका इन्हिसार इस दुनिया की इबादत पर है, तो ये इबादत एक अहम चीज है। बशायर ने फरमाया कि इबादत के साथ साथ इस इबादत की हिफाजत होती है नेक सोहबत से। कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसान चाहे कि मैं इबादत कर लूं तो इबादत आराम से कर लेगा, शैतान उसको मुख्तलिफ चक्करों में डालेगा। उसकी ख्वाहिशात और उसकी जरूरियात उसे बहुत ज्यादा दूसरी तरफ ले जाएंगी। तो इबादत का सिस्टम महफूज जब होगा, जब इंसान नेक सोहबत में आना जाना रखेगा। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी, कि हमारे लिए अगर अल्लाह ताला जन्नत का फैसला कर भी लेते हैं तो हमारे लिए ये दुनिया जो है ये जन्नत से बेहतर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये दुनिया जन्नत से कैसे बेहतर। उन साहबी ने आज क्या अल्लाह के नबी, इस दुनिया में हम हर रोज आपका दीदार करते, जन्नत में आपका क्या मकाम होगा, आप कहाँ होंगे, उसके करीब हम नहीं आ सकते। तो ये दीदार जन्नत में तो नहीं होगा, ये दुनिया में दीदार होता है, तो इसलिए हमारे लिए तो ये दुनिया जन्नत से बेहतर है। तो नबी अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान जन्नत में उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत रखता होगा, जिसके साथ दुनिया में वक्त गुजारेगा, जिसके पास आना जाना रखेगा, जन्नत में उसी के साथ होगा। तो अगर नेक लोगों के साथ, अल्लाह वालों के साथ वक्त गुजर गया, मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो गया, इंसान जन्नत में उन्हीं के साथ है। तो दुनिया में वक्त गुजारने का बेहतरीन तरीका जिक्र मामूलात, और इस जिक्र मामूलात के साथ साथ बेहतरीन तरीका इस दुनिया में वक्त गुजारने का अल्लाह वालों की सोहबत है। तो पहला सवाल कयामत के दिन कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। शेखुपुरा के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, चंद साल पहले हजरत का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनसे बैत हुए वे एक बड़े आलिम दीन फरमाते हैं कि मुझे हजरत से बैत हुए कई साल हो गए, मगर मैं हजरत से बहुत करीबी ताल्लुक नहीं रखता था। हजरत की मजलिस में वक्तन फवक्तन चले जाता, शहर दूसरा था, तो हर हफ्ते की जो तकरीब होती या हर हफ्ते की जो मजलिस हजरत की होती तो उसमें पाबंदी से नहीं जाता था, हजरत को भी पता था दूसरे शहर से आता, मगर चले जाता महीने दो महीने में एक मरतबा। और मैं अपने आप को यही समझाता कि जी क्योंकि आलिम दीन हूं और किताबें पढ़ाता हूं तो मसरूफ हूं। हजरत के बताए हुए मामूलात भी पूरी तरह से नहीं कर पाता, और जाहिर है मुश्किल से 5 वक्त की नमाज पढ़ता। तहज्जुद मुझे पढ़ने का शौक था, कुरान और हदीस में उसके बड़े फजाइल सुने थे, मगर वो भी पाबंदी से नहीं पढ़ पाता था, कभी पढ़ ली तो कभी नहीं पढ़ ली। फरमाया फरमाते हैं कि कभी 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे कि 3 दिन लगातार पड़ी हो, सालों हजरत से ताल्लुक, मगर ये सूरत हाल बनती नहीं थी। दिल ये जरूर था एक पाबंदी के साथ तहज्जुद गुजार बन जाओ। फरमाते हैं कि हजरत के साथ ताल्लुक हुए हुए कई साल हो गए, और एक मरतबा इसी तरह महीने में एक आध मरतबा जब मैं हजरत की खिदमत में हाजिर होता तो मजलिस के अख्तिताम पे हजरत से इजाजत लेके अपने शहर जाने की तैयारी थी, तो जिस वक्त हजरत से इजाजत मांगी तो हजरत ने फरमाया कि मौलाना आप 3 दिन यहाँ रह जाए खानकाह पे। अब जिंदगी में पहली मरतबा हजरत ने कोई हुक्म दिया, मगर दिमाग पे और दिल पे बड़ा बोझ महसूस हो रहा था, क्योंकि जहन बना हुआ नहीं था। जहन यही था कि ये 1-2 घंटे की मुसाफत में हजरत की खानकाह है, इस मजलिस में जाऊंगा और मजलिस अटेंड करके और वापस आ जाऊंगा। तो जहन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि सुबह सबक भी पढ़ाना है, और हजरत ने बेजा एक बोझ डाल दिया मेरे ऊपर। ये भी था कि 3 दिन खानकाह में रहना जरा मुश्किल है, घर के मुकाबले में खानकाह में थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, खाने पीने भी अपनी मर्जी का नहीं, बाकी और चीजें, इतने सारे लोग भी होते हैं, तो बोझ बड़ा जोरदार महसूस हुआ। मगर ये भी जहन में आया कि इतने सालों का ताल्लुक हजरत के साथ में पहली मरतबा हजरत ने कोई हुक्म दिया है, तो मना करते हुए बेअदबी भी महसूस हो रही थी। तो फरमाते हैं कि मैंने हजरत की इस बात पे मना नहीं किया, और मैंने कहा जी हजरत जैसे आप फरमाते हैं। बोझ के बावजूद फरमाते हैं जैसे तैसे 3 दिन जो है वो मैंने गुजार लिए। बुजुर्गों का नाम मेरे जहन में आ गया, हजरत अलाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुपुरा वाले। तो आलिम फरमाते हैं कि हजरत सैयद अलाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये हुक्म दिया, मैंने 3 दिन गुजार लिए। 3 दिन मुकम्मल हुए तो हजरत से इजाजत लेके और अपने शहर वापस आया। अल्लाह की शान, जैसे ही अपने शहर पहुंचा तो पीछे से खबर आई कि हजरत का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, मगर साथ साथ दिल को एक इत्मीनान हुआ कि अगर मैं हजरत का ये हुक्म ना मानता तो मुझे बहुत अफसोस होता कि हजरत ने जाने से पहले जो आखिरी हुक्म मुझे किया वो मैंने मना कर दिया। तो इसलिए मेरे दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ कि जो हजरत ने मुझे हुक्म दिया मैं पूरा कर दिया, और मैं 3 दिन हजरत की खानकाह में गुजार लिया। फरमाते हैं कि पहली मरतबा, इतने सालों का ताल्लुक था मगर पहली मरतबा 3 दिन हजरत के साथ गुजारने को मिले, 3 दिन इस अच्छे माहौल में वक्त गुजरा। फरमाते हैं कि इस 3 दिन की बरकत ये थी कि मैं जो तहज्जुद पढ़ने का शौक रखने के बावजूद सालों से कभी पाबंदी नहीं हुई, इस 3 दिन की बरकत से 3 साल तक मुतवातिर तहज्जुद की पाबंदी अल्लाह ने अता फरमाई। तो जिसके इस सवाल के जवाब में जो कयामत के दिन पूछा जाएगा कि जिंदगी कैसे गुजारी, जो तो ये दो बातें कर सका वो बड़ी जबरदस्त तरीके से कामयाब होगा कि जी जिंदगी इबादत में गुजारी, जिंदगी अल्लाह वालों की सोहबत में गुजारी। ये वो जवाब है जो अल्लाह हमसे चाह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जिंदगी सही तरह से गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, इस जिंदगी की हकीकत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم
الرحمن
الراحمين.
الرحيم.
جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وعليكم
ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله
وبركاته.
وبركاته.